मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, आप उनको उनका आदेश ले आए जिस मैं मिल सकूं। इधर मैं सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहु ग्रस्त सूर्य के समान हो रहे हैं। राहु कौन कई ग्रस्त होकर के महाशोक में विवल हो रहे हैं। उस समय सूर्य का चेहरा अंधकार में अंधकार से भर जाता, नहीं दिखता, यही तो ग्रंथ। इसमें उनका चेहरा भी एकदम राख से ढकी हुई आग, जल से शून्य तालाब के समान ये स्त्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अंतर्मुखी व्याकुल महाराज को संबोधित करके उनके पास में गए और बोले, महाराज राम और लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पृथ्वीनाथ आपके ये पुत्र पराक्रम परंपराक्रमी पुरुष सिंह है, श्री राम ब्राह्मणों और आश्रितों सेवकों को अपना सारा धन दे करके और तैयार होकर के आए हैं वन में जाने के लिए। आपका कल्याण हो। यह सब सुदेव से मिल करके उनसे विदा लेकर के इस समय आपका केवल दर्शन चाहते हैं। दर्शन करके आज्ञा नहीं, आज्ञा तो हो ही गई है, इसे वो जाना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर के आपका दर्शन कर लें और फिर विशाल वन में अभी चले जाएंगे, फिर अब दर्शन नहीं होगा। इसलिए राम को एक बार अपने आंखों से एक बार तो भर करके देख लीजिए, क्योंकि आप उस समय जीवित रहेंगे कि नहीं देखने के लिए जब लौट करके आएंगे। महाराज दशरथ जी अपने आंखों को पूछा, थोड़ा सा अपने मन को सांत्वना दी, बड़े धैर्य के साथ में थोड़ा सा वैसे लेटे लेटे ही बड़े दुख से कहा, सुमंत तुम ही मेरे एकमात्र सहायक, तुम अभी जाकर के हमारी जितनी रानियां हैं उन सबको बुलाओ, मैं अपनी रानियों के समेत राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन करना, अकेले नहीं, तुम सबको बुला लो। सुमन जी तत्क्षण बड़े वेग से गए और उनके स्त्रियों से कहा, जे देवियों महाराज जी आपको बुला रहे हैं, और तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सब काम छोड़ करके आप लोग चले। महाराज की आशा आज्ञा से सुमन जी की आशा कहने पर वो 350 पति प्रताप अर्ध सप्त शतास्तत्र, कितना हुआ अर्ध सप्त शत आधा पचास सात, कितना हुआ 350 पति प्रति स्त्रियां, मैंने 360 लिखा है। इसमें तीन प्रधान है और क्या कहते हैं तीनों को,
पाठ रानी
और बाकी सब रानियां, ये सब कौशल्या को घेर लिया चारों तरफ से। बस एक बात, कौन बात कहती कहती तो अपने भवन में थी, उसी भवन में महाराज दशरथ और बाकी सब उस समय में कौशल्या के पास में थी, सभी आ गई और उनको घेर करके चल पड़ी कौशल्या के महाराज दशरथ के पास में कैकेयी के भवन में। तुम सबके आ जाने पर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने से कहा, सुमंत से कहा जी अब मेरे पुत्र को जल्दी से बुलाओ, कर रहे हैं आंखों से पानी देखने लगे, अश्रु प्रवाहित हो बीच बीच में पहुंचते हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राम के सामने क्या मैं कहूं, कुछ भी नहीं समझ रहे जी, मुझे क्या कहना चाहिए। राम लक्ष्मण और सीता सुमंत्र के साथ में जो बाहर थे प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गए। महाराज ने दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़ करके आते देखा और सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए, उठने की शक्ति नहीं थी और थर थर कांपते हुए उठे और दो चार पैर महाराज राम के तरफ में उधर से आ रहे चले, दो चार चलते चलते बस मूर्छित होकर के फिर गिर गया। अतंक सारी स्त्रियां रोने लगी। महाराज दशरथ को बड़े वेग से महाराज दौड़े, किंतु पास पहुंचने के पहले दुख से व्याकुल होकर के पृथ्वी में गिर पड़े और मूर्छित हो गए। सारी रानियां भी रोने लगी। उस समय राम और महाराज महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर, राम भी थोड़ा से दौड़ गए लक्ष्मण जी पीछे, ये पिताजी तो गिर गए, बस दौड़ करके अपने हाथों से इन दोनों ने उठाए। उस समय में भवन के भीतर में सहसा आभूषणों के ध्वनि के साथ में, सिर को जैसे पिटती है तो हाथ में तो सोने के कंगन और चूड़ियां है, झंकृत हो उठी, हाराम 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 करने एक मैंने खूब जोर से विलाप की ध्वनि उठ गई, शोक एकदम उमड़ पड़ा। या आत्मनाथ हाराम हाराम या आत्मनाथ केवल का, और महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े और उनको इस प्रकार से गिरते हुए राम लक्ष्मण को आते देख करके अब किसी का घट के नहीं रहा, सभी लोग विलाप करने लगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े, ये भी रोने लगे, पिताजी की अवस्था देखकर के माताओं की अवस्था देखकर के भी रोने लगे। उन तीनों ने महाराज को भुजाओं से उठाकर एक ने बीच में पकड़ा, एक ने सिर की तरफ पकड़ा, सीता जी ने पैरों की तरफ में पकड़ा और पकड़ करके धीरे धीरे लेकर के पलंग पर शोकाश्रु से, शोकाश्रु के द्वारा सागर में डूबते हुए महाराज दशरथ को दो घड़ी तक कोई चेत नहीं हुआ। दो घड़ी माने कितना होता है?
दो घड़ी माने 48 मिनट,
48 मिनट में 24 घंटे का एक घड़ी। रामचंद्र जी पंखे जलने लगे, नौकर टौकर उस समय सुमंत जी केवल थे और कोई तार नहीं, रानियां थी, रानियां इतनी भाव विकल हो गई, कोई भी सांस नहीं कर सके पंखा लेने का। राम जी उनको साहस और धैर्य था, बड़े धैर्य से बोले करते, शायद पंखा है कि नहीं तो वस्त्रों से ही, और पानी का छीटा दे करके उनको उठाने लगे, पिताजी पिताजी करने लगे। अपरिच्छेद त्वां महाराज सर्वेषां ईश्वरो अपि ईश्वरो असि न पश्चितं दण्डकारण्यं पश्चतम कुशलेन मा। महाराज आप लोग, आप हम लोगों के स्वामी हैं, महाराजा हैं, और पुत्र का संबंध तब छोड़ दी, स्वामी आप पालन करने वाले हैं, मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं, यहीं से बनाया है प्रोग्राम, चित्रकेतु का प्रोग्राम नहीं, चित्रकेतु पथ में पड़ेगा और सब पथ में पड़ेंगे, दंडकारण्य बहुत विशाल वन है, कितने मीलों में है, विंध्याचल से लेकर के और दक्षिण तक विशाल वन है, मध्य भारत का वो स्थान, यहां पर आज उसका नाम है
नासिक,
नासिक गोदावरी वहीं से निकलती है, विशाल वन वहां पर बहुत से ऋषि महर्षि विशेष विशेष स्थान पर हैं, बाकी वहां का जितना राज्यभार वो चलाता है रावण के, वहां पर प्राबल्य है उनका, इसलिए वहां पर बड़ा भारी कठिन है, सिंह भालू बाघ इत्यादि रहते हैं, मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए महाराज मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं। गले घंटा, अरे ठहर, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं, आप अपनी कल्याणमय दृष्टि मेरी ओर करें। मेरे साथ लक्ष्मण जी को भी वन में जाने के लिए आदेश दे। मैंने इसको बहुत समझाया कि तो ये मान नहीं रहा, रहने से मर जाएगा, इसलिए इसको भी आदेश, और एक और भी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे साथ में सीता भी वन में जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बतलाया सीता जी को और लक्ष्मण जी को, किंतु ये दोनों यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, अतः दूसरों को मान देने वाले। हे नरेश, आप सुख छोड़ करके हम सबको, मुझको, लक्ष्मण और सीता जी को भी उसी तरह बहन बन जाने की आज्ञा दी जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादियों को आदेश दिया। जब सनकादि उनके मन से प्रकटित हुए सनंदन शरद कुमार, तो उन्होंने बहुत से समझाने की चेष्टा की। ये वन में जाकर के तपस्या करना चाहते थे और ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र जाए। नारद जी के बाद में हुए, तो उस समय में जितना समझाया क्योंकि युक्ति के द्वारा उन्होंने उसका खंडन किया और पिताजी से आदेश लिया। पिताजी बड़े शोकमग्न हो गए, तभी उनको आदेश देना पड़ा और उन्होंने सनातन कुमार को आदेश दिया। किंतु पीछे जब ब्रह्मा जी को नारद जी पैदा हुए, वो भी अजोनी, उनके गले से स्मरण मात्र से ही मानस पुत्र हैं। वशिष्ठ जी, अंगिरा जी भी ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मरीचि, पुला, क्रतु, ये अष्ट की सात ऋषि, ये भी अजोनीज हैं। इनका जन्म किसी स्त्री के द्वारा नहीं हुआ है। तो नारद जी जब पैदा हुए तो नारद जी भी वन को जाने लगे, तो उन्होंने मना किया, बहुत मना किया, नहीं माने। कहा जाए तू नहीं मानता है बेटा होकर के, तो हमारे चार पुत्र और चले गए, तुम भी चला जाएगा, तो मैं प्रजा कैसे उत्पन्न करूंगा, तुमको प्रजा उत्पन्न करना। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, जाओ तुम गंधर्व होकर के जाओ और हजारों गंधर्वियों के साथ में तुम रहो और पुत्र संतति हो, एवं मस्तु स्वीकार करके चले गए। और वहां पर आकर के कुछ दिनों के बाद में ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थली में आए पुष्कर में, और वहां पर नंगा होकर के नृत्य करने लगे ब्रह्मा जी। अरे बेटा तू बड़ा बदमाश है, हमने बुलाया यज्ञ में गान करने के लिए, तू ऐसा कर रहा है, जाओ तुम शूद्राणी के गर्भ से जन्म। अजय और मस्त यही तो चाहता था, पर खुश होकर गए और ये तीसरे जन्म में हुए। उस समय में सनक सनंदन घूमते घूमते वहां पर गए और उनसे बातचीत हुई, चातुर्मासी वहां पर हुआ, इसके बाद भजन करके फिर भगवान ऐसे संतादियों को जैसे हुआ मौन रह गए। मैंने मौनम सम्मति लक्षण, ब्रह्मा जी ने आदेश नहीं दिया, क्या किया, देखा जे मानेगा नहीं तो तुम्हारी इच्छा। ऐसे महाराज दशरथ जी ने आदेश नहीं दिया जे तुम जाओ, कभी नहीं कहा। राम ने मौन सम्मत समझ करके माता जी का है इनका भी, और इन्होंने तो वर दिया है, इस प्रकार शांत स्वभाव से वनवास के लिए राजा की आदेश की प्रतीक्षा के लिए रामचंद्र जी की ओर देख करके महाराज ने उनसे कहा, अहं राघव कई क्या किया व्रतानि मोहित अयोध्यायां त्वामेव अद्य भव राजा निगृह्यमान। उन्होंने कहा रघुनंदन तुम आज ही अभी हमें कैद कर ले और कैद करके जेल में डाल दो, आज मेरी बुद्धि विकृत हो गई है, कहते ही ज्योति है वर्त के कारण मुंह में पड़ गया हूं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, मैं कोई चिंता नहीं कर। तुम पुत्र है, तुमको वनवास देना नहीं चाहता और अपने बात से मैं भ्रष्ट नहीं होना चाहता। ऐसा कहने पर रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके पिताजी को इस प्रकार से कहते, महाराज आप सहस्त्रों वर्ष तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे, मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा ही नहीं, जो आपको कैद करें हमको कैद करके क्या होगा, इसलिए आप यही तो बने रहे हैं और सहस्त्र वर्ष तक राजा बने रहे, 914 वर्ष तक वन में घूम घाम कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के बाद पुनः आपके जुगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, मस्तक चूंगा, राजा नहीं होऊंगा। ये नहीं कहा राजा दशरथ, एक तो सत्य के बंधन में फंसे हुए थे और दूसरे एकांत में कहके उन्होंने राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बात, अरे जल्दी कहो जाने के लिए, जल्दी कहो, जल्दी चले जा, जल्दी निकले, अरे तो तुम्हारी बात मति बिगड़ जाएगी और तुम कह देगा कि मत जाओ, ले जल्दी से कहो। इस अवस्था में अर्थनाथ से रोते हुए अपने प्रिय पुत्र राम से बोले, साथ तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित बाधाओं से निकलता है। ये वाल्मीकि ने, बेटा रघुनंदन तुम सबसे स्वरूप धर्मात्मा, तुम्हारे विचार को पलटना असंभव है, तुम मानेगा नहीं, परंतु रात भर और रह जाओ, सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। इधर कह कह कर रही है, नहीं इशारा कर रही है, खबरदार अभी तुरंत जाना है, अभी तुरंत आराम की तरफ जल्दी चले जाओ। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर, आज की रात ही अपनी माता मैंने कौशल्या मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को तृप्त होकर के कल प्रातः काल यहाँ से जाना है, आज रात में तो रही जाओ। मेरे पुत्र राम, तुम सब का दुष्कर कार्य कर रहे हो, मेरा प्रिय करने के लिए तुमने इस प्रकार का मन का आश्रय बना दिया है, हमारा वचन सत्य करने के लिए। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूं, यह मुझे प्रिय नहीं है। तुम वन में जाओ, ये प्रिय नहीं है। अरे तू कहते मत जाओ, यहीं पर भेद है, कुछ पार्थक्य है किससे? महाराज वसुदेव से, वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने कहा हमारा सत्य आग में जल जाए, जैसा मेरा बेटा कह रहा है वैसा करूंगा, चाहे नरक में जाना पड़े कोटिकोट। मैंने कंस से प्रतिज्ञा की, अपने सारे बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा, मैं नहीं इस बेटे को सौंपूंगा, कह दूंगी मुझे लड़की हुई झूठ बोलूंगा, ऐसे गोकुल में पहुंचा दूंगा, ये करूंगा, किंतु मैं सत्य, सत्य क्या है, सत्य क्या है? अरे भगवान की सेवा ही सत्य है, बात तो भक्ति सत्य है, भगवान सत्य है, तो उसी बात हम नहीं करेंगे जरूर कर। इसी मोह के चक्कर में युधिष्ठिर महाराज जी पतित हो गए, भगवान की बात नहीं समझ सके। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, न धर्मम ना धर्मम कुतकल करो तम किल करो ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। हम सत्य सत्य नहीं चाहते, हम वेद और श्रुति स्मृति में जो धर्म है अधर्म है ये सब नहीं मानते। हम क्या करते हैं, एकमात्र राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या करेंगे, इसे नरक हो तो नरक हो, जो कुछ हो हम इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तुम्हें अपना वन में अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता, या मेरी स्त्री कह कही रात में छिपी हुई आग के समान भयंकर भयंकर है, वशिष्ठ ने क्यों नहीं इसकी मैया का जैसा कर दे, ये भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जो माया का प्रभाव में घुसा करके उनके चित्त को दुर्बल कर दिया था, नहीं तो ये कर देते। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था, आज मुझे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है, कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली शिकायती ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है तुम उसी को पार करना चाहते। इस प्रकार से कह करके रामचंद्र जी पिताजी को प्रणाम किया, कहा जिस पिताजी एक मेरी अंतिम आपसे प्रार्थना है, मेरी मैया को कष्ट न हो, कहके तो राजमाता हो जाएगी ना, और उस समय आप रहेंगे, फिर कहके कुछ कहेगी तो उसकी भी बात तो आप मान लेंगे ना, ऐसा मत करो, मेरी मैया को किसी प्रकार से कष्ट न हो, इस बच्चा आप रहेंगे, मुझे निश्चिंत रहूंगा, और यदि यही गड़बड़ हो जाए, वो बेचारे आंखों से पूरित और एकदम कुछ कहेंगे उत्तर नहीं दे सकते, जब चल लेंगे तो वो मूर्छित हो गए। इसके बाद में पटोट देने की बात आई रामचंद्र जी के लिए, उसने कहा ऐसे नहीं, अपनी दासी को पहले से ठीक रखा था, चीर वस्त्र ले आना, चीर मन गेरुआ वस्त्र और सब ये कुछ आठा जिसको कहते हैं कौन या केसों को जटाओं के रूप में, पहले उनका केस बड़ा चाकू चिकू घूंघरा ले बाप को लक्ष्मण जी के, उनको अभी इनको जटा बना दिया जाए, और ब्रह्मचारियों जैसा सन्यासी जैसा बलवासी जैसा इनका किया, और बलकल वस्त्र पहन करके यहीं से निकले। कहते हुए दासी वहां पर सामने आ गई लेकर के वस्त्र, बड़ी खुशी होकर के मन फरा किया आ रही रख दिया, रामचंद्र जी ने उठा लिए और सिर पर रख करके उसको पहन लिया, उस सभा में कपड़ा जब खोलने लगे सभी लोग और आर्तनाद कर, महाराज दशरथ तो सह नहीं सके, वशिष्ठ जी देख रहे, लक्ष्मण जी ने भी पहन लिया। सीता जी कहती तो वो कहते हैं कह कही बेटी तुम्हारे लिए भी ये प्रश्न, तो वो सब जाने लगे कैसे लिए तो पहनना में जानती नहीं। इतने वशिष्ठ जी से नहीं रह गया कि उनकी पत्नी वशिष्ठ जी से इसमें लिखा है, रामायण में उसे अनुपति को दिखाया कि वशिष्ठ जी का,
वशिष्ठ जी का,
वशिष्ठ जी रोका उसको, तुम इतनी कुकर्म इतनी नालायक और इतनी नीच हो गई, तुम इतनी निष्ठा को उतारा, अरे विचार तो करो तुमने राम को वनवास दिया है, इन दोनों को तुमने इस पर तुम्हारे वनवास लेने का अधिकार नहीं है, ये चीर बस उपाय कर। तभी रामचंद्र जी ने क्या किया, मुस्कुराते हुए उस चीरखंड को लेकर के उसके ऊपर से उसको महाराज दशरथ ने कहा कि सारी जितना संपत्ति है इसके साथ में जाए, सीता जी को सब देने लग गए। रामचंद्र जी और सीता जी तो चाहते नहीं थे, वो तो पहले से वो सब लुटा दिया था। कहते ने कहा जैसे ये सुना घर को लेकर के हम और बस हमारा बेटा राज्य करेगा, सुने घर में उल्लुओं पर राज्य करेगा, केवल उल्लू यहाँ पर वास करेंगे और भस्म पर, ऐसा राज्य नहीं चाहिए हम तो राज्य का राजा उसको हमने बनाने के लिए कहा राज्याभिषेक, तो कोई प्रजा ही नहीं रहेगी, धन रहेगी, संपत्ति नहीं रहेगी, कोई खजाना नहीं रहेगा तो क्या होगा। रामचंद्र जी कहने लगे ठीक कह रहे, ऐसा ही किया और कुछ नहीं लिया, सीता जी के कपड़े दिए उनको, लक्ष्मण जी को ये कपड़े दे दिए, लक्ष्मण जी ने उसको संभाल लिया, क्यों धनुष दिया बाण दिया और उनका चिरखंड पहन करके सब लोग रोने लगे, उनके पीछे पीछे चले, अंत में सुमंत को कहा बंदे खा करके ले आना, बस रामचंद्र जी को रथ पर बैठाया, रथ चलने लगा, सारी प्रजाएं उनके एकदम सुना हो गया, अयोध्या की सड़कें खाली हो गई सब कुछ, और छोड़ करके रामचंद्र जी चल। उस दिन शाम हो गई तब एक नदी के किनारे वहां पहुंच करके विश्राम किया, आज यहीं तक कथा विश्राम। बहुत सुंदर लाजवाब करुणामयी आराम की लीला है।
सियावर रामचंद्र जी।